जया गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जया गिरिवर धारी जया यशोदा नंदना जया ब्रज जन रंजना यशोदा जय हो जया यशोदा नंदना जया ब्रज जन रंजना जया यमुना तीरा बनचारी जया कुंज बिहारी जया यमुना तीरा बनचारी जया कुंज बिहारी जया राधा माधव जया कुंज बिहारी जय हो जया राधा माधव जया कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया प्रभु पदा प्रभु पदा जया प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर सी श्रीमध्यस्थ डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सीवरम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताई की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय श्री राम भगवान आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर 18वां वार्षिकोत्सव महामहोत्सव की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गोरांबा हरे कृष्णा। तो आज रामनवमी का बहुत पवित्र उत्सव है, राधा पार्षदी का 18वां वार्षिक उत्सव इष्ट कैलाश मंदिर में, और यहाँ का नौवां फरीदाबाद मंदिर का नवा वार्षिक महामहोत्सव है। तो आज बहुत ही विशेष अवसर है कि हम लोग सुनेंगे राम कथा को। तो पिछली बार कुछ दिन पहले महिपालपुर में हमने राम कथा सुनाई थी, फिर जिस बिंदु पर वहाँ विश्राम दिया था उससे आगे चार दिन हमने राम कथा करी छिप्पीवाड़ा मंदिर में। कल वो अंतिम दिन था और उसके आगे अब मैं राम कथा यहाँ पर सुना रहा हूँ, तो जितना समय होगा तो उतना हम सुनेंगे राम कथा। ये जो प्रसंग है ये इस समय चल रहा है कि हनुमान जी समुद्र पार कर चुके हैं और लंका में पहुंच चुके हैं और उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए छिप करके, जिस वृक्ष के नीचे सीता जी श्री राम के विरह का अनुभव कर रही हैं। और रावण चिंता में है, इस चिंता में है कि कब श्री राम आए और मेरा वध करें, इसलिए वो यही सोच रहा है कि अभी तक राम क्यों नहीं आए, सीता जी को मैंने जो है यहाँ पर हरण करके रखा हुआ है। तो उसको स्वप्न हुआ, रात्रि के अंत में स्वप्न मिला कि एक बानर श्री राम का भेजा हुआ उस वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है और देख रहा है। तो उसने सोचा कि मैं अच्छा अवसर है कि मैं अभी सीता को जो है ज़्यादा कठोर वचन सुनाऊं जिससे कि श्री राम जल्दी आए मुझे मारने के लिए। इस प्रकार से वो जो है सीता जी से बहुत ही कठोर बातें बोलता है और सीता जी ने जो है जब उसको कठोर वचन सुनाए, रावण को कठोर वचन सुनाए, तो सीता जी को मार डालने के लिए उसने तलवार निकाली और मंदोदरी ने समझाया कि इस मनुष्य स्त्री को आप छोड़ दीजिए, आपके पास तो बहुत सी देवताओं की स्त्रियां, गंधर्वों की, विद्याधरों की, अच्छे अच्छे कुल की स्त्रियां हैं और आप भोग रहे हैं उनको, तो इसको आप क्या भोगेंगे, तो वैसे दुखी है और कमजोर है, बिल्कुल मैले वस्त्र धारण किए हुए है, शरीर भी मैला हुआ है, आप इसको भोग करके क्या करेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से मंदोदरी ने समझाया रावण को। तो रावण ने फिर राक्षसियों से ये कहा जो सीता जी को घेर करके बैठी थी कि सीता को भय से या आदर से जिस किसी उपाय से मेरे बस में करो, तो यहाँ तक हमने छिप्पीवाड़ा मंदिर में ये कथा सुनाई थी, अब इसके आगे आप लोग सुनिए रावण ने क्या कहा। रावण ने राक्षसियों से कहा जो सीता जी की सुरक्षा कर रही हैं, उनसे कहा कि यदि 2 महीने के भीतर ये सीता मेरे वशीभूत हो जाए तो सब प्रकार के सुख भोगेगी मेरे साथ, राज्य भोगेगी। द्विमासाभ्यंतरे सीता यदि मे वशगा भवेन तथा सर्वसुखोपेता राज्यं भोक्षति सा मया। और यदि 2 महीने तक भी ये मेरी शैया पर आना स्वीकार ना करे तो इस मानवी को मार कर मेरा प्रातः काल का कलेवा बना देना। यदि मां से दया दुर्धम मच्छयाम नाभिनंदती तदा मे प्रातः राशाए हत्वा कुरुते मानुषी। ऐसा कहकर अब यहाँ पर भी रावण का जो आंतरिक भाव है क्या है कि जैसे राम जल्दी आए और मेरा वध करें, तो रावण की इच्छा है कि जल्दी मारा जाए राम के हाथों से, तो 2 महीने का उसने समय दिया तो राम को सूचना मिलेगी। और रावण को सपना हुआ है तो वो सोचता है शायद ये सपना सच्चा हो कि सचमुच कोई बानर यहाँ छिप करके बैठा है और राम को सूचना देगा, इसलिए सुना सुना करके वो ये कह रहा है कि 2 महीने में जो है सीता को मार दिया जाएगा, है ना। तो ऐसा कहकर के रावण अपनी स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चला गया और राक्षसियाँ सीता जी के पास आकर उन्हें अपने अपने उपायों से भयभीत करने लगीं। राक्षसियों की जितनी बुद्धि जितना उनका उपाय है उस तरह से कर दी भयभीत, और उनका स्वभाव तो कठोर है इसलिए कोमल शब्द बोलना जानती नहीं राक्षसियाँ हैं। इत्युक्त्वा प्रेयोस्त्री भी रावणोऽन्तःपुरालयम् राक्षस्यो जानकी मेत्य भीषयन्त्यः सुतर्जनः।
तो अपने अपने उपायों से सीता को भयभीत कर रही हैं। क्या बोली? एक बोली कि सीते तेरा यौवन वृथा चला गया, यदि तू रावण का सहवास करे तो सफल हो जाए, तेरा रूप और जवानी है ये सफल हो जाए, ऐसा बोले। तत्रैका जानकी आहे यौवनम ते वृथागतम रावणे न समासाद्य सफलम तो भविष्यति। दूसरी ने जब सीता जी उत्तर नहीं देती हैं और उनको बहुत बुरा लगता है, तो दूसरी ने क्या कहा और गुस्सा दिखाया। एक ने तो कम से कम इस तरह से बात की, सुझाव जैसे दिया हो तो इतना कठोर नहीं था, दूसरी ने और कठोर बोला। क्या बोली? सीता अब देर क्यों करती है? इसी प्रकार किसी ने खड़ग निकाला, जानकी को मारने, अभी अभी ही तुझे मार डालेंगे। मारना नहीं है, रावण की आज्ञा नहीं है, लेकिन दिखा रहे अभी मार दूंगी, खड़ग निकाल करके मारने के लिए तैयार होकर बोली, इसके अंगों को काट कर अभी अलग अलग कर डालो। और कोई भयंकर मुख वाली राक्षसी अपना मुंह फाड़ कर डराने लगी, मुंह फाड़ कर मुंह दिखाती है कि मैं खा जाऊंगी तुझको, अभी जिंदा खा जाऊंगी। अपराचा है कोपे न किम विलंबे न जानकी इदानीम छेद्यता मंगम विभज्य चा पृथक पृथक अन्या तो खड्ग मुद्यम है जानकी मंत मुद्यताम अन्या कराल वदना विदार्याश्यम अभिशय। तब सीता जी को इस प्रकार डराती हुई उन कुरूप राक्षसियों को रोककर त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी बोली। वो राक्षसी जो है वृद्धा है, तो उसको ज्यादा अनुभव है, धर्म का अनुभव है। एवं ताम भीषयन्ति स्ता राक्षसी विकृतानां निवार त्रिजटा वृद्धा राक्षसी वाक्यम अब्रवीन। अब वो त्रिजटा क्या बोली राक्षसियों को? डांटने लगी, अरे दुष्टा राक्षसियो मेरी बात सुनो, इसी से तुम्हारा हित होगा। सुन लो पहले, सीता को डांटने से पहले तुम लोग सुनो मेरी बात। वो डांट करके बोली, श्रृणुध्वं दुष्ट राक्षस्यो मदवाक्यं वो हितं भवे। तुम इन रोती बिलखती सीता को मत डराओ, बल्कि इन्हें नमस्कार करो। अगर तुम्हारा अगर तुम हित चाहती हो, अपना अपनी भलाई चाहती हो, तो क्या करो? इनको नमस्कार करो। ये रोती बिलखती देवी हैं, इनको नमस्कार करो। मैंने अभी अभी स्वप्न में देखा है कि कमल लोचन श्री राम लक्ष्मण के साथ सफेद ऐरावत हाथी पर चलकर आए हैं, और मैंने उन्हें संपूर्ण लंकापुरी को जलाकर रावण को युद्ध में मारकर सीता जी को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे हुए देखा है। और ये जो समय है ये निशांत काल का समय है। निशांत काल 3:22 से शुरू होता है, 3:22 से 5:46 तक निशांत काल चलता है। अंधेरा रहता है, लेकिन रात्रि का ये अंत होता है। तो इस समय अगर कोई सपना आए तो वह सच्चा होता है। तो रावण ने सपना देखा तो वह भी सच्चा ही था कि हनुमान, मतलब एक बानर, उसने देखा कि बानर, कोई बानर है जो कि बहुत छोटा रूप धारण किए पेड़ में बैठा हुआ देख रहा है। और त्रिजटा ने भी स्वप्न देखा, तो वो बता रही है इस समय सपना मैंने देखा है, तो ये सच्चा है स्वप्न। तो मैंने क्या देखा है कि लंकापुरी जल गई है और रावण युद्ध में मारा गया है, और श्री राम सीता को अपनी गोद में लिए पर्वत शिखर पर बैठे हुए हैं। रावण गले में मुंड माला धारण किए हुए है और शरीर में तेल लगाए है, नंगा होकर अपने पुत्र पोत्रों के साथ गोबर के कुंड में डुबकी लगा रहा है, और विभीषण प्रसन्न चित्त से श्री राम के पास बैठा हुआ अति भक्ति पूर्वक उनकी चरण सेवा कर रहा है। इससे निश्चय होता है कि श्री राम अनायास ही रावण का कुल सहित नाश कर विभीषण को लंका का राज्य देंगे। इस स्वप्न का यह संकेत है। कौन बोल रही है? त्रिजटा बोल रही है। किससे बोल रही है? राक्षसी में बोल रही है, और सीता जी के सामने ही बोल रही है। और सीता को गोद में बिठाकर निस्संदेह अपने नगर को चले जाएंगे श्री राम जो है। न भीष्यध्वं रुदतीं नमस्कुरुते जानकीं इदानीमेव मे स्वप्ने रामा कमललोचनः आरुह्य रावतं शुभ्रं लक्ष्मणेन समागतः दग्ध्वा लंकापुरीं सर्वां हत्वा रावण माहवे आरोप्य जानकीं स्वांके स्थितो दृष्टो गमूर्धनि रावणो गोमयहृदे तैलाभ्यक्तो दिगंबरः अगाहन पुत्र पुत्रैश्च कृत्वा वदन मालिकां विभीषणस्तु रामस्य सन्निधो हृष्टमानसः सेवां करोति रामस्य पादयोर्भक्ति संयुतः सर्वथा रावणं रामो हत्वा सकुलमञ्जसः विभीषणायाधिपत्यं दत्त्वा सीतां सुभाननां अंके निधाय सुपुरीं गमिष्यति न संशयः। त्रिजटा के ये वचन सुनकर राक्षसियां डर गईं। कहाँ वो डर आ रही थी सीता जी को, हाँ अब उल्टा उनको डर लगा है कि हमने कोई बड़ा अपराध कर दिया है और हमें तो प्राण दंड मिलेगा कि अभी हम सीता जी को डरा रहे हैं और आगे चल कर क्या होगा, रावण मारा जाएगा, विभीषण का राज्य होगा और जब शिकायत आएगी कि हम लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है तो हमें क्या होगा, फांसी की सजा मिलेगी, तो डर गई डर गई हैं, चुपचाप जहां तहां बैठ गई। कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। त्रिजटाया वचः श्रुत्वा भीतास्ता राक्षस स्त्रियः तूष्णीमासं तत्र तत्र निद्रावशम् उपागताम्। राक्षसियों के डराने से सीता जी अत्यंत भयभीत और भेबल हो गई। इससे ऐसा भी लगता है कि त्रिजटा ने अलग से बताया होगा राक्षसियों को, सीता जी के सामने नहीं बताया, तो सीता जी को पता नहीं कि त्रिजटा ने क्या बताया। तो सीता जी जो है भयभीत हैं और बहुत बेबल हैं, अपना कोई सहायक ना देखकर दुख से मूर्छित हो गई। तर्जिता राक्षसी भीषा सीता भीताति भेबला त्रातारम नादि गच्छन्ति दुखेन परिमूर्छिता। फिर आंखों में आंसू भरकर अति चिंताकुल होकर इस प्रकार कहने लगी, इसमें संदेह नहीं प्रातःकाल होते ही राक्षसियां मुझे खा जाएंगी, ऐसा कौन उपाय है जिससे मुझे अभी मृत्यु प्राप्त हो जाए। सीता जी सोच रही है मुझे इस समय ही मृत्यु प्राप्त हो जाए। अश्रुभि पूर्ण नयना चिंतयन्ति तमब्रवीन् प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो माम् न संशयः इदानीमेव मरणं केनोपायेन मे भवेन्। प्रातःकाल ये राक्षसी मुझे खा लेंगी, अभी निशांत काल चल रहा है और प्रातःकाल शुरू होगा 5:46 से। इस प्रकार मृत्यु का निश्चय करके भी उसको कोई साधन ना देख करके, मृत्यु चाहती हैं सीता जी लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा उनको, साधन ना देकर सीता वृक्ष की शाखा पकड़े हुए अत्यंत दुख से भरकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। एवं सु दुखे न परिप्लुतासाम विमुक्त कंठम रुदती चिराय आलम्ब शाखाम कृत निश्चयामृत न जानती किंचिद उपाय मंगनाम। ये कथा सुना रहे हैं महादेव, किसको सुना रहे हैं, पार्वती को। तो ये बड़ी सुंदर कथा है, ये मैं नहीं सुना रहा हूँ, महादेव जी सुना रहे हैं, आप लोगों को महादेव जी सुना रहे हैं ये कथा। तो हे पार्वती, इस प्रकार रोते रोते सीता जी ने सोचा, अच्छा तो मैं फांसी लगाकर ही अपना शरीर क्यों ना छोड़ दूँ, फांसी लगाने का उपाय उनको सूझ जाए। क्यों, क्योंकि वस्त्र वो कुछ पहने हुए हैं उसका कुछ हिस्सा फाड़ करके क्या करेंगे, गले में बांध करके, शाखा से बांध करके और क्या करेंगे, लटक जाएंगे। लटकना आसान है, पैरों को ढीला कर देंगे तो लटक जाएंगे, लटकना आसान है ना, जरूरत नहीं है कि बहुत ऊंचाई से लटकें, जहाँ खड़े हैं पैरों को ढीला कर दें तो पूरा वजन आ जाएगा गले में और शरीर छूट जाएगा। तो सीता जी विचार कर रहे हैं कि हाँ ये उपाय है कि मैं फांसी लगा करके शरीर छोड़ दूँ। इन राक्षसियों के बीच रहकर श्री राम के बिना जीने से लाभ ही क्या है। उद्बंधने न वा मोक्षे शरीरम राघवम बिना जीविते न फलम किम श्याम मम रक्षोधि मध्यतः। फांसी लगाने के लिए मेरी लंबी वेणी पर्याप्त होगी, वेणी क्षमा करिए, वो उनको एक दूसरा उपाय है, उनकी जो वेणी है वो काफ़ी लंबी है तो उसी से वो फांसी लगा सकते हैं, पर्याप्त है। सीता जी को इस प्रकार मरने का निश्चय करती देख सूक्ष्म रूपधारी हनुमान जी हृदय में कुछ विचार कर उनके कानों में पड़ने योग्य धीमी वाणी से सने सने इस प्रकार कहने लगे। अब हनुमान जी ने सोचा कि अब बहुत आवश्यकता है कि मैं सीता जी को अपना परिचय दूं, लेकिन अगर मैं आप परिचय भी दूं तो भी विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि पहले उनके साथ धोखा हो चुका है। रावण ने क्या किया था, साधु के रूप में आए और साधु पर भी अब विश्वास उठ गया तो किसके ऊपर विश्वास होगा है? तो हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बहुत बुद्धिमान है। तो वो सोच रहे हैं कि सामने किसी भी प्रकार से मैं जाऊं तो सीता शरीर छोड़ सकती हैं, तो सामने जाकर के बात ना करूं, अच्छा है कि सामने जाकर के बात ना करूं, कोई भी रूप धारण करूं मैं है? ब्राह्मण के रूप धारण करूं, साधु के रूप धारण करूं, हनुमान जी सब रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन सामने जाने से वे शरीर छोड़ देंगे कि उनके पास ऐसा विश्वासघात हुआ है कि अब विश्वास कहीं नहीं रह गया, तो क्या करूं। तो धीरे धीरे वो मतलब बोल रहे हैं कि सीता जी सुन पाएं और बाकी जो राक्षसियाँ सोई पड़ी हैं तो वो ना जागे, और सीता जी के कानों में आवाज़ जाए, तो धीरे धीरे बोलने लगे। दीर्घावेणी मम अत्यर्थम उद्बंधाय भविष्यति एवं निश्चित बुद्धिम ताम मरणायाथ जानकीं विलोक्य हनुमान किंचन विचार्य तन्नवासत शनय शनय सूक्ष्म रूपो जानक्या स्त्रोत्रगम वचः। अब सुनिए हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, जो सीता जी को जीवन प्रदान करे, कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो सीता जी को जीवन प्रदान करे। यहाँ राक्षसों के स्थान में कोई ऐसी बात नहीं बोलता, क्या बोल रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए अयोध्याधिपति महाराज दशरथ बड़े प्रतापी थे, उनके तीनों लोकों में विख्यात चार पुत्र हुए, वे थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों ही देवताओं के समान शुभ लक्षणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु वंश संभूतो राजो राजा दशरथो महान अयोध्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोके विश्रुता पुत्रा देव समा सर्वे लक्षण रूपलक्षिता रामश्च लक्ष्मणश्चैव भरतश्चैव शत्रुहा। उनमें से बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ अपने पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आए थे। वे महामना गौतमी नदी के तीर पर पंचवटी आश्रम में रहते थे। उस आश्रम से श्री राम की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा सीता जी को ले गया। तब अति शोकाकुल श्री राम ने सीता जी को इधर उधर ढूंढते हुए पृथ्वी पर पड़े पक्षीराज जटायु को देखा। अब सीता जी को सब समझ में आ रहा है, पहले से उनको इतनी जानकारी है, और जटायु उनके उनके सामने ही मारा गया रावण के हाथों, तो जो बात निकल रही है इस समय किसी की आवाज़ में, तो सीता जी को विश्वास हो गया कि इतना तो सही है। श्री राम ने जटायु को पृथ्वी पर पड़े हुए देखा, उसे तुरंत ही दिव्य धाम पहुंचाकर वे ऋषिमुख पर्वत पर आए। ज्येष्ठो राम पितुर्व्याख्यान दंडकारण्य मागता लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह वास गौतमी तीरे पंचवट्यां महामना तत्र नीता महाभागा सीता जनक नंदिनी रहिते रामचंद्रेण रावणेन दुरात्मना ततो रामोति दुखार्तो मार्गमाणोथ जानकी जटायु संपक्ष राजम अपश्यन् पतितं भुवि तस्मै दत्त्वा दिवं शीघ्रं ऋष्यमुखम् उपागमन। वहां पर आकर श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की। अब ये नई बात है कि राम ने क्या किया, सीता जी को कुछ पता नहीं, उस समय मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई समाचार नहीं, न्यूज़पेपर नहीं था, तो कुछ पता नहीं चला सीता जी को अभी तक, हाँ कितने दिन हो गए हैं, 4 महीने हो चुके हैं, कुछ पता नहीं चला। अब श्री राम ने क्या किया है, उनको समाचार मिल रहा है कि श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसकी स्त्री का हरण करने वाले दुष्ट बाली को मारकर उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार श्री राम ने मित्र का कार्य पूरा किया। वानर राज सुग्रीव ने भी समस्त वानरों को बुलाकर सब और सीता जी की खोज करने के लिए भेजा है। तो पहली बार सीता जी को समाचार मिला कि राम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। दसों दिशाओं में वानर जो है सीता जी को खोजने के लिए गए हैं और कितनी दूर, कितनी कितनी दूरियों में जो है सीता जी को खोज रहे हैं और किसी वानर ने सीता जी का दर्शन नहीं किया है। लेकिन राम की पत्नी है तो उनके स्वभाव और उनके गुणों का अंदाजा करके कि कोई ऐसी स्त्री हो तो खोजें। केवल स्वभाव और गुण वो जानते हैं लेकिन देखा नहीं। उन्हीं में से मैं एक आया हूं यहां पर। सीता जी को ये आवाज मिली, उन्हीं बानरों में से एक बानर मैं यहां पर आ गया हूं। मैं सुग्रीव का मंत्री बानर हूं, अभी नाम नहीं बताया। मैं संपाति के कथनानुसार 100 योजन समुद्र लांघ कर तुरंत लंकापुरी में आया और यहां सर्वत्र सीता जी को ढूंढा। मैं यहां पर ढूंढता रहा और अशोक वाटिका में ढूंढते ढूंढते मैंने ये सिंहसपा वृक्ष देखा है और यहां श्री राम की महारानी सीता जी को अति क्लेश से शोक करते हुए पाया है। अब सीता जी को सुना रहे हैं कि मैंने सीता जी को शोक करते हुए पाया है और सीता जी सुन रही हैं कौन है। सीता जी को आश्चर्य हो रहा है, इनके दर्शन से मेरा आना सफल हो गया है, मेरा आना सफल हो गया है। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान श्री हनुमान मौन हो गए। आप देख रहे हैं कि सीता जी की क्या प्रतिक्रिया है, अभी बिल्कुल छिपे हुए हैं, इतनी आवाज उन्होंने निकाली। अब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं अब सीता जी की क्या प्रतिक्रिया है। अब निश्चित है कि आत्महत्या का विचार नहीं रहा, अब आत्महत्या का विचार नहीं रहा कि राम का समाचार मिला है, जीवन का आधार मिला है। तो हनुमान जी मौन हो गए। सुग्रीवेण कृता मैत्री रामस्य विदितात्मनः तन्भार्या हारिणं हत्वा वारिणं रघुनन्दनः राजेभिषिच्य सुग्रीवं मित्रकार्यं च कारसहं सुग्रीवस्तु समानाप्य वानरान् वानरे प्रभुः प्रेषयामास परितो वानरान् परिमार्गणे सीतायास्तत्र चैकोऽहं सुग्रीवे सचिवो हरिः सम्पाति वचनात् शीघ्रं उल्लङ्घ्य सतयोजनम् समुद्रम नगरीम लंकाम विचिन्वन जानकीम शुभाम सनेरसो गवनिकाम विचिन्वन शिंसपारुतम शिंसपातरुम अद्राक्षम जानकीमत्र शोचंतीम दुख सपनुताम रामस्य महिषीम देवीम कृतकृत्योऽहमागतः इत्युक्तो परिरामाथ मारुतिर्बुद्धिमत्तरः। तो ये आवाज इतनी आई कि मेरा कार्य है मतलब पूरा हो गया, जितना मुझे करना था, जितना अभी तक सब बानरों ने परिश्रम किया है उसका जो फल है वो मुझे प्राप्त हो गया है, क्योंकि मेरा और कोई दूसरा कार्य नहीं है। कोई बोल रहा है और सीता जी सुन रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि ये मेरा कार्य जो है इस समय पूरा हो गया है कि मैंने सीता जी को देख लिया है, मैंने सीता जी का पता लगा लिया, अभी दर्शन खुला तभी तो दर्शन खुला है। हनुमान जी कह रहे हैं मैं सीता जी को देख लिया है तो सीता जी के दर्शन हम लोग हो रहे हैं। तो अब ये बातें सुनकर सीता जी को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य, यहाँ पर कैसे समाचार मिला श्री राम का, कौन बोल रहा है, आश्चर्य हुआ और कहने लगी मैंने आकाश में जो शब्द सुना है क्या ये वायु का उच्चारण है। उनको जो है मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है? सौयोजन सौयोजन मतलब 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर का समुद्र पार करके क्या यहाँ कोई आ सकता है? तो उन्होंने आशंका की, अंदाजा लगाया कि हवा में आवाज हुई होगी, तो हवा में आवाज होती है, कुछ साए साए की आवाज होती है, इतनी आवाज कैसे हवा में हुई? तो सीता जी सोचते नहीं, इतनी आवाज हवा में कैसे हो सकती है, क्या वायु का उच्चारण किया हुआ है? सीता क्रमेण तत् सर्वम श्रुत्वा विस्मय माययोम किमिदं मे श्रुतं व्योम्नि वायुना समुदीरितम्। अथवा स्वप्न मैं ये सब सुन रही हूं मैं। आप सीता जी सोचते नहीं कि सपना मैं, हो सकता है मैं सपना देख रही हूं, ये सपना तो नहीं है, मैं तो जाग रही हूं। और कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं तो उसका स्वप्न चला जाता है। जैसे उसको समझ आता है कि यह सपना है तो सपना फिर नहीं रहता उसका। तो सीधा ही सोचती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं सपना देख रही हूँ, तो सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ कि सपना देख रही हूँ तो सपना नहीं है। फिर क्या मेरे मन की भ्रांति है? क्या मेरे मन की भ्रांति है? तो मन की भ्रांति इतनी ज़्यादा तो नहीं हो सकती, इतना समाचार मन की भ्रांति के द्वारा तो नहीं हो सकता है, है ना? तो फिर सोच रही है क्या है, अथवा ये सब सत्य ही तो नहीं है, सब कुछ सत्य समाचार, क्योंकि दुख के कारण नींद तो मुझे आती नहीं है, तो स्वप्न कैसे हो सकता है? और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूं इसलिए ये भ्रम भी कैसे हो सकता है? इतना जो है सीता जी तर्क वितर्क कर रही हैं कि क्या हो सकता है, किसने बोला ये सब बातें, और बोली स्पष्ट थी, जो कुछ भी बोला समाचार बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई शब्द ना सुनाई पड़ा हो, आधा सुनाए आधा ना सुनाई दे, पूरा सुनाई दिया है, एक एक शब्द सुनाई दिया है, लेकिन क्या हो सकता है? स्वप्नो वा मे मनोभ्रांतिर निधि वा सत्य में वेतन निद्रा में नास्ति दुखे न जाना मे तन कुतो भ्रमः। जिसने मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले ये वचन कहे हैं वो प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट हो। अब उनको विश्वास हुआ कि कोई बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है जो बोल रहा है, और किसी ने बोला ही होगा, ये आकाश में ऐसे शब्द नहीं पैदा हो सकते, हवा में नहीं हो सकते, सपना तो है ही नहीं, मन की भ्रांति भी नहीं है, तो कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है तो मेरे सामने प्रकट हो। तो सीता जी ऊपर की तरफ नहीं देख रही, सीता जी ऊपर की तरफ नहीं देख रही, वे जहाँ खड़ी हैं वैसे ही खड़ी हैं, और जहाँ देख रही हैं वहीं देख रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं, उन्होंने भी आवाज़ लगाई, कितनी आवाज़ दी कि वो व्यक्ति सुन ले, तो सामने प्रकट हो। ये मे कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम सदृश्यताम महाभागः प्रियवादी ममाग्रतः। सीता जी के वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस वृक्ष के पत्र भाग से उतर कर सीता जी के सामने खड़े हो गए। श्रुत्वा तं जानकी वाक्यम हनुमान पत्र खंडतः अवतीर्य सन सीता पुरतः समवस्थितः। उस समय उन्होंने बानर रूप, पक्षी के बराबर आकार वाले बानर रूप में, कितना छोटा बानर है, पक्षी के आकार का बानर, कितना छोटा बानर है, और लाल मुख है, बानर का लाल मुख है, और पीला रंग है, पीले रंग का बानर है, और चटक पक्षी के समान आकार वाला बानर धीरे से सामने आकर सीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। हनुमान जी को बहुत चिंता है कि कोई ऐसी चेष्टा ना हो कि सीता जी को कुछ भय पैदा हो जाए, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है बानर। कल भेंग प्रमाणांगो रक्ताश्या पीत वानर नाम सन कैसी ताम प्रांजलि ही पुरता स्थिता। उसे देखकर सीता जी को फिर भय हुआ, फिर से भय हुआ। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, तो सीता जी को फिर भय हुआ, क्या कि रावण या कोई राक्षस मेरे साथ में छल कर रहा है और ऐसी बातें बोल करके भी मुझे विश्वास दिला करके मेरे साथ कुछ है धोखा देना चाहता है, तो उनको फिर से भय पैदा हो गया। भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से वानर रूप धारण करके रावण ही आ गया है, रावण ही जो है मुझे तंग कर रहा है, उनको डर लगा। दृष्ट्वा तम जानकी भीता रावणोऽयम् उपागतः मां मोहयितुम् आयातो माया वानराकृतिः। ये सोचकर वे चुपचाप नीचे को मुख किए बैठी रही। तब हनुमान जी ने सीता जी से फिर कहा, देवी आप जैसी आशंका कर रही हैं मैं वो नहीं हूं। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है, सीता जी के चेष्टाओं से समझ गए कि उनको यह डर लग रहा है और उनका डर उचित है। उचित है कि नहीं? उचित है, क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। तो हनुमान जी ये नहीं मान रहे कि नहीं क्यों डर रही हो, मैं थोड़ी ऐसा हूँ, ऐसी शिकायत नहीं कर रहे हनुमान जी है, बल्कि वो डर रही हैं, उनका डर उचित है, क्योंकि जैसी स्थिति उनकी है, जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ है, तो वो डरेंगी। तो हनुमान जी फिर विश्वास दिला रहे हैं, क्या कह रही हैं, जैसी आशंका कर रही हैं देवी मैं वो नहीं हूँ, हे माता मेरे विषय में आपको जो शंका हो रही है उसे दूर कीजिए, मैं तो श्री राम का दास और वानरराज सुग्रीव का मंत्री हूँ और हे देवी संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप पवन देव का मैं पुत्र हूँ। इत्येवं चिन्तयित्वा सा तोष्णीमासीदवो अधोमुखी पुनरप्याहताम सीताम देवयत्वं विसंकसे नाहं तथा विधो मातस तदि शंकां मयि स्थिताम दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः सचिवो हम हरिन्द्रस्य सुग्रीवस्य सुमप्रदे वायो पुत्रो हम अखिल प्राणभूतस्य शोभने। तो सीता जी को देवी कह रहे हैं हनुमान जी, लेकिन देवी तो कोई भी बोल सकता है ना, फिर माता बोला, माता बोल करके कोई फिर तो उल्टा व्यवहार नहीं करेगा। तो हनुमान जी देवी कहकर बात कर रहे हैं, फिर उन्होंने सोचा कि देवी कहकर बात करने में भी कोई व्यक्ति उल्टा व्यवहार कर सकता है, देवी किसी को भी कहा जा सकता है, अपनी पत्नी को भी देवी कोई बोलता है, माता को भी देवी बोलता है, अपने पुत्र को भी देवी बोलता, देवी शब्द तो इतना सामान्य है। तो हनुमान जी ने सोचा कि देवी शब्द से जो है सीता जी को विश्वास नहीं होगा, तो मैं माता शब्द का प्रयोग करूँ, है ना, तो रावण माता शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, अगर धोखा देना चाहता है तो देवी शब्द का तो प्रयोग करेगा, माता शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, है ना। तो हनुमान जी जो है माता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहा है, हाँ नाहम तथा विधो माता, नाहम तथा विधो माता तिज संकाम, हे माता मैं उस प्रकार का नहीं हूं, शंका को त्यागो, मैं ये स्थिताम मुझ में आपकी जो शंका बन गई है उसको आप त्याग दो, क्योंकि मैं आपको माता कह रहा हूं, है ना। ये सुनकर सीता जी ने हाथ बांधे खड़े हुए हनुमान जी से कहा, हनुमान जी हाथ बांधे खड़े हैं कि आप शंका त्याग दो, माता आप शंका त्याग दो, हाथ बांधे खड़े हैं हनुमान जी, है ना। तो उनको लगा कि रावण ऐसा नहीं करेगा, रावण इतना विनम्र नहीं है। तो हनुमान जी से कहा सीता जी ने, तुम जो कहते हो कि मैं श्री राम का दास हूँ, सो वानर और मनुष्यों की मित्रता कैसे हो सकती है, एक ये शंका तो है मेरी, अब जो शंका है वो मेरी दूर करो, मनुष्य की वानर से मित्रता कैसे हो सकती है। तब सामने खड़े हुए हनुमान जी ने प्रसन्न होकर जानकी जी से कहा, तो सीता जी को कुछ विश्वास हुआ, कुछ शंका है इसलिए पूछ रही हैं, है ना। तत्श्रुत्वा जानकी प्राह हनुमंतम कृतांजलिम वानराणाम मनुष्याणाम संगतिर घटते कथम यथा तुम रामचंद्र से दासो हमति भास से तामाह मारुति प्रीतो जानकी पुरता स्थिता। अब हनुमान जी क्या बोले, सबरी की प्रेरणा से, सबरी की प्रेरणा से श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर आए। उस पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को आते देखा तो मन में भय मानकर मुझे उनका आशय जानने के लिए भेजा। अब पूरा समाचार बता रहे हैं कि सुग्रीव को भी भय हो गया राम से। क्या भय हो गया कि बाली तो यहाँ नहीं आ सकता, बाली को साप है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतंग मुनि का साप है। तो बाली ने शायद इन राजकुमारों को मुझे मारने के लिए भेजा होगा, और कपट से जो है ये राजकुमार जो है दिखा नहीं रहे हैं अपना भाव कि मुझे मारना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा भाव दिखा रहे हैं, चेहरा बिल्कुल ऐसे बनाए हुए हैं जैसे बड़े शांत हैं, या अंदर कपट हो सकता है इन दोनों राजकुमारों के अंदर, और ये मुझे मारने के लिए आए होंगे, बाली ने भेजा होगा। तो हनुमान जी से कहा कि जाओ और ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ, तो ब्राह्मण से ये झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और थोड़ा सा पता चल जाए कि ये मुझे मारने के लिए आए हैं तो थोड़ा सा सारा कर देना, मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा, यहाँ से भाग जाऊंगा, दूर से ही मैं देख रहा हूँ, मैं तुमको देख रहा हूँ, और थोड़ा सा सारा कर देना जरा सा, और मैं तुरंत भाग जाऊंगा अपनी जान बचा करके। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को इसलिए भेजा था। तो हनुमान जी बता रहे हैं सीता जी को कि मित्रता कैसे हुई, मित्रता हो ही नहीं सकती थी। तो तब मैं ब्रह्मचारी का वेश बनाकर राम जी के पास आया कि कोई भी कपट हो तो ब्रह्मचारी और ब्राह्मण से तो कपट नहीं होगा, सच सच बताएंगे। तो मैं आया, ऋषिमुख के मगाद रामहा समरिया अनोदिता सुधी सुग्रीव ऋषिमुखस्तो दृष्टवान राम लक्ष्मण। तो सीता जी का जो आशय था वो सही था कि वानर लोग जो है पर्वतों में या वृक्षों में निवास करते हैं, मनुष्य थोड़ी वहाँ जाते हैं। तो कैसे मित्रता हुई, मित्रता तो नहीं होनी थी, लेकिन पहला कारण क्या था, सबरी ने श्री राम को बताया कि आप मित्रता करिए सुग्रीव से, वो आपका काम करेंगे। और फिर सुग्रीव ने भी जो है विश्वास नहीं किया श्री राम पर, तो मुझे भेजा, और मैं ब्रह्मचारी के रूप में आया था। ऋषिमुखम मगाद रामः सबरिया अनोदिता सुधे सुग्रीवो ऋषिमुखस्तो दृष्टवान राम लक्ष्मणो भीतो माम प्रेषयामास ज्ञातुम रामस्य हृद्गतम ब्रह्मचारी वपुर धृत्वा गतो हम राम सन्निधिम। और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हें कंधे पर चढ़ाकर सुग्रीव के पास ले आया। तो सुग्रीव ने जब देखा कि मैं उनको अपने कंधे में चढ़ा करके ला रहा हूँ, तो सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये मुझे मारने के लिए नहीं आए हैं, इनका भाव गलत नहीं है। और दोनों की मित्रता कराई, मैंने ही दोनों की मित्रता कराई। ज्ञात्वा रामस्य सद्भावं स्कंदो परिनिधाय तौं नीत्वा सुग्रीव सामीप्यं सख्यं चाकरवम् तयो। सुग्रीव की पत्नी को वाली ने छीन लिया था, श्री राम ने उसे एक ही बाण से मारकर सुग्रीव को वानरों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब सुग्रीव ने आपकी खोज के लिए बड़े बड़े वीर और पराक्रमी वानरों को दिशा विदिशाओं में भेजा। सुग्रीव से हृता भार्या वालिना तम रघुत्तमः जघाने केन बाणेन ततो राज्येभ्य सेचयन् सुग्रीवं वानराणां सा प्रेषयामास वानरान् दिग्भ्यो महाबलान् वीरान् भवत्या परिमार्गणे। उस समय मुझे चलता देख श्री राम ने मुझसे आदर पूर्वक कहा, गच्छन्तं राघवो दृष्ट्वा माम अभासत सादरम्। हे हनुमन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर है, तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण की कुशल कहना, और अपनी पहचान के लिए मेरी ये उत्तम अंगूठी जिस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए हैं सीता जी को अति सावधानी से दे देना। अंगुली एकम में तन्मे परिज्ञानार्थम उत्तमम सीताय दीयताम साधु मन्नामाक्षर मुद्रितम। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी अंगुली से उतार कर वो अंगूठी मुझे दी, मैं उसे बड़ी सावधानी से लाया हूँ, देवी आप ये अंगूठी देखिए। इत्युक्त्वा प्रददौ मह्यं कराग्रात् अंगुलीयकम् प्रयत्नेन मया नीतम् देवी पश्यांगुलीयकम्। ऐसा कि हनुमान जी ने वो अंगूठी देवी सीता जी को दे दी और नमस्कार कर हाथ जोड़कर दूर खड़े हो गए। इत्युक्त्वा प्रददौ देव्यै मुद्रिकां मारुतात्मजः नमस्कृत्य स्थितो दूरान् बद्धांजलि पुटो हरिः। उस राम नाम अंकिता मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगीं। दृष्ट्वा सीता प्रमुदिता राम नामांकितां तदा मुद्रिकां शिरसा धृत्वा सर्वदानंद नेत्रजा। तब वे कहने लगी, हे बानर तुम मेरे प्राण दाता हो। तुम क्या हो? मेरे प्राण दाता हो, तुमने मुझे प्राण दिए हैं। तुम बड़े ही बुद्धिमान और श्री राम के भक्त और प्रियकारी हो, मुझे निश्चय है उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है। उन्होंने अगर ये अंगूठी दी है, है? तो उन पर उनका तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। अंगूठी दी कपे मे प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसि राघवे भक्तोसि प्रियकारी त्वं विश्वासोस्ति तवैवहि। यदि ऐसा ना होता तो तुम पर पुरुष को वे मेरे पास क्यों भेजते? एक पराये पुरुष को मेरे पास क्यों भेजते? इसका अर्थ है कि तुम्हारे ऊपर श्री राम पूरा विश्वास करते हैं। हनुमान मेरी सारी आपत्ति तुमने देख ही ली है। नो चेल मत सन्निधिम चान्यम पुरुषम प्रेषयत कथम हनुमान दृष्टमखिलम मम दुःखादिकम त्वया। श्री राम को ये सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो। सीता जी क्या कह रहे हैं? किस तरह से बताओ श्री राम को कि उनको दया आए मेरी स्थिति पर और मुझे लेने के लिए जल्दी से जल्दी आए। ऐसा नहीं बताना कि सीता जी वहां कुशल पूर्वक हैं, सब ठीक चल रहा है, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं बताना। क्या बताना? मेरा कष्ट बताना कि मैं कितने कष्ट में हूं, जिससे मुझे जिससे उन्हें मेरे ऊपर दया उत्पन्न हो। और हे साधु, अब मेरे प्राण 2 महीने और रहेंगे, 2 महीने में रावण भी क्या करेगा, मुझे मार डालेगा। सर्वम कथय रामाय यथा मे जायते दया मासे द्वयावधि प्राणा स्थास्यन्ति मम सत्तम। यदि बीच में श्री राम न आए तो ये दुष्ट मुझे खा जाएगा, अतः यदि श्री राम वानर राज सुग्रीव के सहित अन्य वानरों को लेकर तुरंत ही रावण को पुत्र सेना के सहित संग्राम में मार कर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका ये पुरुषार्थ माना जाएगा और तभी तुम इस वर्णन किए पुरुषार्थ का वर्णन करना। हे हनुमान, तुम भी ऐसी युक्ति से उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण को मार कर मेरा उद्धार करें, जल्दी से जल्दी, यथाशीघ्रम, एज सून एज पॉसिबल। सीता जी कह रहे हैं ऐसी बात करो उनसे, श्री राम से इस तरह से बात करो, ऐसा करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो। वाचिक पुण्य मतलब वाणी का पुण्य, बोलने का पुण्य, अपनी बोलने की शक्ति का प्रयोग करो। कितना अच्छा आप बोल सकते हो किसी विषय में कि किसी व्यक्ति को सुनने वाले को मतलब बिल्कुल आश्वस्त हो जाए, आश्वस्त हो जाए कि हाँ बिल्कुल ठीक बोला है और ये समय जो है बहुत शीघ्रता का है। तो इस तरह से तुम वाचिक पुण्य प्राप्त करो। तब हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी मैंने जैसा है कुछ देखा उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण सहित श्री राम शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेना युक्त सुग्रीव के सहित आएंगे और रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। देवी इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। नागमिष्यति चेन्द्रामो भक्षिष्यति माम खलः अतः शीघ्रं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्वितः वानराणीकपय सार्धं हत्वा रावण माहवे सपुत्रं सबलं रामो यदि मां मोचयेत् प्रभु। तत्तस्य सदृशं वीर्यं वीरवर्णय वर्णितं यथा मां तारयेन्द्रामो हत्वा शीघ्रं दशाननं तथा यदस्व हनुमान् वाचा धर्म मवाप्नुहि हनुमान पितामह देवी दृष्टो यथा मया। रामः स लक्ष्मणः शीघ्रम् आगमिष्यति सायुधा सुग्रीवेण ससैन्येन हत्वा दशमुखं बला। समानेष्यति देवी त्वाम् अयोध्यां नात्र संशयः तमाह जानकी रामः कथं वारिधि माततम्। इस पर सीता जी कहने लगी कि श्री राम किस प्रकार समुद्र को पार करके यहाँ आएंगे। सीता जी की शंका है श्री राम किस प्रकार समुद्र को पार करके यहाँ आएंगे। हनुमान जी बोले वे दोनों मेरे कंधों पर चढ़कर आएंगे। राम लक्ष्मण कैसे आएंगे, मेरे दोनों कंधों पर चढ़कर आएंगे और वानर सुग्रीव सेना सहित इस वितीर्ण समुद्र को आकाश मार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। सब वानर उछल उछल करके आएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे देवी अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी अभी लक्ष्मण से श्री राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ। देवी मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जिससे श्री राम मेरा विश्वास करें, उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकता पूर्वक उनके पास जाऊँगा। समान सति त्वाम अयोध्याम नात्र संशयः तमाह जानकी रामः कथं वारिधि माततम् तीर्थ्वा या सत्यमे आत्मा वानरानेकपयसः हनुमानाह मिष्कन्धा वारोय पुरुषर्षभौ आयाश्चतः ससैन्यश्च सुग्रीवो वानरेश्वरः विहाय सा क्षणेनैव तीर्थ्वा वारिधि माततम् निर्दहिष्यति रक्षोभां त्वत्कृते नात्र संशयः अनुज्ञां देहि मे देवी गच्छामि त्वरयान्वितः द्रष्टुं रामं सा भ्रात्रा त्वरयामि तवान्तिकं देवी किञ्चित् अभिज्ञानं देहि मे येन राघवः। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ दीजिए, क्या कुछ चिन्ह दीजिए। मैंने राम का चिन्ह आपको दिया जिससे आपको पूरा विश्वास हुआ कि मैं राम के पास आया हूँ, तो अब उनके लिए भी कुछ चिन्ह दीजिए जिससे उनको विश्वास हो कि मैं आपके पास ही आया हूँ। केवल ऐसी कल्पना नहीं है कि राम सोचेंगे मुझे सांत्वना देने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केश पास में स्थित चूड़ामणि को निकाला और उसे हनुमान जी को देकर कहा, हे वानर इससे श्री राम लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे। विश्वसेन माम प्रयत्नेन ततो गंता समुत्सुकः तथा किंचिन विचार्यात है सीता कमल लोचना विमुच्य केश पाशान्ते स्थितं चूड़ामणिं ददौ अनेन विश्वसेन रामस् त्वां कपीन्द्र स लक्ष्मणः। सीता जी ने अपने जितने आभूषण थे सब उतार करके वस्त्र भी आभूषण भी जितने थे उनके शरीर में उतार करके और पोटली बांध करके सुग्रीव के पास फेंक दी थी। तो उनके शरीर में कोई आभूषण नहीं था, केवल एक वस्त्र रह गया था सीता जी के शरीर में ना? अब वो क्या दे सकती हैं, तो चूड़ामणि रह गई थी उनके सिर में ना? तो वो उतार करके हनुमान जी को दी। हे बस उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बतलाती हूँ, एक बात बतलाती हूँ तो वो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिल के आए हो, क्योंकि उनके सिवा और इस बात को कोई नहीं जानता। एकांत की कुछ ऐसी घटना जिसे उनके सिवा और कोई नहीं जानता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम उनको बताओगे तो समझ जाएंगे कि तुम मेरे पास से आए हो। एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री राम एकांत में मेरी गोद में सिर रख कर सो रहे थे। अभिज्ञानार्थ मन्यच्चा वदामि तब सुब्रत चित्रकूट गिरो पूर्वम एकदा रहसि स्थितः मदंके सिर आधाय निद्राति रघुनंदनः। इसी समय इंद्र का पुत्र काक वेश में वहां आया, तो वह वेश धारण करके कौन आया, इंद्र का पुत्र आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल 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 अंगूठे को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ डाला। इंद्र काकस्तदागत्य नखैस्तुंडे न चासकृन् मत्पादांगुष्ठिमा रक्तम विदधा रामिशाशयाम। तब जब श्री राम जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर बोले, प्रिय किस दुरात्मा ने मेरा यह अप्रिय किया है। ततो राम प्रबुद्ध्यात है दृष्ट्वा पादम कृतव्रणम केन भद्रे कृतम चेतन विप्रियम मे दुरात्मनाम। वे ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कौवे को बारंबार मेरी ओर आते हुए देखा। उसकी चोंच और पंजे खून से सने हुए थे, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी, श्री राम समझ गए कि यही दुष्ट है, तो खून लगा उसके चोंच में पंजों में। उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। इत्युक्ता परतो पुरतो पश्यन् वायसम्मां पुनः पुनः अभिद्रवन्तं रक्ताक्त नखैतुण्डं च कोपहां। उन्होंने तुरंत ही एक तिनका उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। तब वो कौवा भी भयभीत होकर भागा और तीनों लोकों में भटकता फिरा, किंतु जब इंद्र ब्रह्मा आदि से भी उसकी रक्षा ना हो सकी तो बहुत ही डरता डरता श्री राम के चरणों में गिरा। उसे शरणागत देख श्री राम ने उससे कहा, तृणमेकम उपादाय दिव्यास्त्रेणाभियोजितं चिक्षेप लीलया रामो वायसो परि तज्ज्वलन् अभिद्रवन् वायसश्च भीतो लोकान् भ्रमन् पुनः इंद्र ब्रह्मादिभिश्चापि असख्यो रक्षितुं तदा। रामस्य पादयोरग्रे पतंदी पतंदी इत्यादया निधे शरणागतम आलोक है रामस्तन इदम ब्रवी। मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः तू केवल अपनी एक आँख देकर यहाँ से चला जा। तब वो कौवा अपनी बाई आँख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वही श्री राम ना जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर यह समझ आता है कि शरण लेने के बाद भी दंड कुछ मिलता है, क्योंकि जो अपराध उसने किया था वो अक्षम्य था, वो क्षमा नहीं किया जा सकता। तो शरण लेने के बाद भी श्री राम ने से कुछ क्षमा किया लेकिन कुछ दंड भी दिया। तो समझने वाली बात है, ऐसा नहीं है कि मैं शरण ले लूँगा माफ़ी मांग लूँगा तो माफ़ हो जाएगा। कोई सोचे हाँ ठीक है प्रभु जी बड़े दयालु हैं, अभी अपराध करता हूँ बाद में शरण ले लूँगा माफ़ी मांग लूँगा तो क्षमा कर देंगे, और ऐसे करता रहता है कोई व्यक्ति इस बल पर, तो क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। उसने जो अपराध किया तो उसका कुछ दंड तो मिलना चाहिए। तो बाई आंख ले ली उसकी, याद रहे आगे से ना करे और कोई दूसरा भी ना करे, जरूरी है कि नहीं है? नहीं नहीं है, जरूरी है? कुछ निश्चित नहीं, कुछ निश्चित नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। जरूरी है दंड देना, जरूरी है? हाँ अच्छा, लेकिन अब इतने पुरुषार्थी हैं और यहाँ रावण ने कितना बड़ा अपराध किया है और उपेक्षा कर रहे हैं, ये कितना आश्चर्य है। सीता जी कह रहे हैं कि राम इतना बड़ा अपराध सहन कर रहे हैं जबकि उसको तो एक आंख उसकी फोड़ ही दी है शरण में आने पर भी। सीता जी का ये कथन सुनकर हनुमान जी ने कहा, देवी जिस समय श्री राम को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा उस समय इस राक्षस मंडल में लंका को एक क्षण में ही भस्म कर डालेंगे। अमोघमे तनस्त्रम में दत्व काक्ष में तो ब्रज सव्यम दत्वा गता काक एवं पौरुषवान अपी उपेक्षते किमर्थम माम इदानीम सोपि राघव हनुमान पीतामा है श्रुत्वा सीतानु भाषितम देवी त्वाम यदि जानाति स्थिताम अत्र रघुत्तम करिष्यति क्षणात् भस्म लंकाम राक्षस मंडिताम। तो हनुमान जी का क्या कहना है कि नहीं, राम की ओर से कोई कमी नहीं है। अभी तक उन्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ पर हो। अब उनको जब मैं जाऊंगा उनको पता चलेगा तब देखो क्या होता है। तो वे जो है सबको नष्ट करेंगे, सब राक्षसों को नष्ट करेंगे। सीता जी ने कहा, वत्स तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो अतः राक्षसों से कैसे लड़ सकोगे। एक कौन सा पक्षी बताया था? है चातक
नहीं, कोई और पक्षी था क्या? जो भी हो, एक पक्षी के बराबर तुम जो है शरीर वाले हो, कैसे राक्षसों से लड़ोगे? सीता जी कह रही हैं, और सब बाणर भी तुम्हारे जैसे होंगे, इतने छोटे छोटे बाणर होंगे कैसे? जानकी प्रायतम मत्स कथम तुम योत्से सुर अति सूक्ष्म वपुः सर्वे वानराश्चा भवादृशाम। देवी जानकी की यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना पूर्व रूप दिखलाया, जो सुमेरु मंदर पर्वत के समान विशाल राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला था। ऐसे वानर हैं श्री राम की सेना में, ऐसे वानर हैं। श्रुत्वा तद् वचनं देव्याय पूर्व रूपम दर्शयन् मेरु मंदर संकासम रक्षोगण विभीषणम्। क्यों दिखाया ये रूप? अब सीता जी को डर नहीं लगेगा, विश्वास हो गया है। अगर पहले दिखाते तो सीता जी डर जाती, या जब विश्वास हो गया अब रूप दिखाया कि इस रूप से मैं क्या करूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा, तो अब रूप दिखाया उन्होंने। हनुमान जी को महापर्वत के समान विशाल देखकर सीता जी को अपार आनंद हुआ, और वे उन वानर से कहने लगी, दृष्ट्वा सीता हनुमंतम महापर्वत सन्निभम हर्षेण महताविष्टा प्रायतम कपि कुंजरम। हे हनुमान, तुम बड़े सामर्थ्यवान हो, अच्छा अब तुम शीघ्र ही श्री राम के पास जाओ, अन्यथा तुझ महाबली वीर को राक्षसियां देख लेंगी, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। अब तुम्हारे रास्ते में बाधा उत्पन्न हो सकती है, राक्षसियां देखेंगी तो बाधा उत्पन्न करेंगी, कौन आया है, कैद करो उसको, पकड़ो बांधो, है? समर्थो से महासत्व द्रक्षन्ति त्वां महाबलम राक्षसस्ते शुभापन्था गच्छ राम अंतिकम द्रुतम। तुम जब आओगे वानरों के साथ तो युद्ध कर सकते हो, इस समय तो फिर भी खतरा है, अकेले हो ना तुम। सीता जी कहते हैं तुम अकेले हो इसलिए चुपचाप चले जाओ। हनुमान जी को भूख लगी थी, वे बोले, देवी आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों से पारण करना है, अपना व्रत पारण करना उपवास मेरा पूरा हो गया है, अब पारण करना है मुझे, आज्ञा दीजिए मुझे पारण करने की, है काफी समय से मैंने पारण नहीं किया है, उपवास कर रहा हूँ, और अब मेरा व्रत पूरा हो गया, उपवास पूरा हो गया है। मुमुक्षुता का पिपरा है दर्शनात् पारणम मम भविष्यति फले सर्वेश तव दृष्टो यथे स्थिते हि मे। तब सीता जी के बहुत अच्छा कहने पर हनुमान ने विफल खाए, उनके विदा करने पर उन्होंने प्रणाम करके चल दिए। फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा कि नहीं नहीं ऐसा काम जो है ठीक नहीं है कि मैं चोर की तरह वापस आऊँ, चोर की तरह तो आया था, अब चोर की तरह वापस नहीं जाऊँगा, कुछ दंड दे करके ही जाऊँगा इन लोगों को। तथेत्युक्त्वा सजान क्या भक्षयित्वा फलम कपिहि तथा प्रस्थापितो गच्छन् जानकीं प्रणिपत्य सह किंचन दूरमथो गत्वा स्वात्मन्येवान्व चिन्तयन्। जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना करने वाला, कोई और कार्य ना करके यूं ही चला जाता है, वो अधम ही है। कार्यार्थम मांगतो दूता स्वामी कार्य विरोधिता अन्यत किंचन संपाद्य गच्छत्यधम एव सः। दूत को कुछ और भी कार्य करना चाहिए, स्वामी ने नहीं बताया, लेकिन फिर भी कुछ कार्य करना चाहिए जो स्वामी के हित में हो, तो कुछ और भी मुझे काम करना चाहिए, है? स्वामी की आज्ञा के बिना भी मुझे कुछ काम करना चाहिए ऐसा, जिससे कि शत्रुओं का अहित हो और मेरे स्वामी का हित हो, अतः मैं कुछ और भी करूंगा और रावण से मिलकर और बातचीत करके श्री राम के दर्शन के लिए जाऊंगा। अतो हम किंजदन्यच्चा कृत्वा दृष्ट्वाथ रावणम संभाषिता ततो दाराजन राम दर्शनार्थम ब्रजामि हम। मन में ऐसा निश्चय करके हनुमान जी ने वृक्षों को उखाड़ा, फल तो खा लिए थे, वृक्षों को उखाड़ने की जरूरत नहीं थी, अब वृक्षों को उखाड़ा, अशोक वाटिका को एक क्षण में ही वृक्षहीन कर दिया, सब वृक्ष उखाड़ डाले, केवल एक वृक्ष को छोड़ करके, कौन सा वृक्ष? सीता जी जहां बैठी थी। यदि निश्चित्य मनसा वृक्षखंडान महाबलः उत्पाट्या शोके वनिकाम निर्वृक्षाम करो क्षणान। क्षणात् का मतलब है एक क्षण, एक क्षण चार मिनट का होता है, चार मिनट में ही सब वृक्ष उखाड़ दिए। कितनी शक्ति है हनुमान जी की, जिसके नीचे सीता जी बैठी थी उस वृक्ष को छोड़कर से समस्त वाटिका को उन्होंने उजाड़ दिया। एक भी पेड़ नहीं था जो कि सही सलामत हो। उन्हें बन उजाड़ते देख राक्षसियों ने जानकी जी से पूछा, ये बानर कौन है? सीता जी से पूछते हैं, ये कौन बानर है? सीता श्रैनगम त्यक्त्वा वनम शून्यम चकार सह उत्पाटयन्तम विपिनम दृष्ट्वा राक्षसयोषितः अपृच्छन् जानकीं कोऽसौ वानराकृति उद्भटः। उन्होंने पूछा, ये वानर कौन है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे वृक्ष को छोड़ करके बाकी से सब वृक्ष उखाड़े हैं, तो ये वानर तुम्हारे पक्ष का ही होगा। उनको पता नहीं चला कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन तुम्हारे पक्ष का होना चाहिए, निश्चित है कि तुम्हारे पक्ष का है। ये एक पेड़ को छोड़ के बाकी सब उखाड़े हैं, कौन है ये मानर? जानकी जी बोली, इस राक्षसी माया को आप लोग ही जानो, राक्षसों की माया को तुम लोग ही जानो, तुम लोग ही सब करते हो ये सब काम। दुख शोक से आतुर मैं क्या जानू, मुझे क्या पता? भवते एव जानन्ति मायां राक्षस निर्मिताम ना हमेनम विजानामि दुख शोक समाकुलाम। मैं तो शोक में मग्न हूं, मैं क्या जानू। सीता जी के इस प्रकार कहने पर भय पीड़िता राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे हनुमान जी की सारी कहतूत कह सुनाई। समझ गए कि सीता जी के पक्ष का ही है, वो बताना नहीं चाहते हैं, तो रावण को बताया कि सीता के पक्ष का ही है कोई भी, उसने उजाड़ डाली है पूरी वाटिका। इत्युक्तास्तरितं गत्वा गत्वा राक्षस्यो भय पीड़िता हनुमताकृतं सर्वं रावणाय निवेदयन्। वे कहने लगी, देव एक बड़ा पराक्रमी वानर सीता जी से बातचीत करके एक क्षण में ही सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। उस महापराक्रमी ने मंदिर के इमारत को भी तोड़ डाला, उसके सब रक्षकों को मारकर इस समय भी वहीं पर बैठा हुआ है, निर्भय होकर के बैठा हुआ है कि आए कोई मेरे सामने, देखता हूँ। वन विध्वंस का अप्रिय समाचार सुनकर रावण तुरंत उठा, उसने 10,00,000 सेवकों को भेजा। कितने सेवक है? कितने सेवक? 10,00,000। इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खंभे को शस्त्र रूप में लिए हुए उस टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे थे। लोहे का खंभा बहुत भारी उखाड़ लिया, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता है, कुछ मिल जाता है तो उसी का प्रयोग करते हैं, कोई चीज मिल जाए। लोहे का खंभा था बहुत बड़ा, तोड़ करके निकाला था। उनकी पूंछ कुछ कुछ हिल रही थी और मुंह लाल था, आकृति बहुत भयानक थी। देव कश्चन महासत्तो वानर आकृति देह भ्रम सीतिया सा संभास हिशोक बने काम क्षणात उत्पाट चैत्य प्रासादम भंजामे दे विक्रम प्रासाद रक्षिणा सर्वान हत्वा तत्र तस्थिवान तत्श्रुत्वा तूर्णमुत्थाय वन भंगम महाप्रियम किंकरान प्रेषयामास न्यूतम राक्षसाधिपः निभग्न चैत्य प्रासाद प्रथमांतर संतितः हनुमान पर्वताकारो लोहस्तम कृतायुधा किंचिन लांगूल चलनो रक्ताशो भीषणा कृति। राक्षसों को आया देख उन्होंने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुनकर सब राक्षस स्तब्ध हो गए, डर करके अकड़ गए एकदम, हिलना डुलना बंद हो गया उन राक्षसों का, इतनी जोर से आवाज लगाई। आपदंतम महासंघम राक्षसा नाम ददर्श सहा चकार सिंहनादम चा श्रुत्वाते मुहुर भीषम। फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। हनुमंतमथो दृष्ट्वा राक्षसा भीषणा कृतिम निर्जघ्नुर विविधा स्त्रोघ है सर्व राक्षस घातिनम। तब जैसे हाथी मच्छरों को मसल डालता है, वैसे हनुमान जी ने उठकर अपने मुद्गर से एक क्षण में सबको पीस डाला। एक क्षण मतलब कितना? 4 मिनट में। कितने थे? 10,00,000। 10,00,000 राक्षसों को चूर्ण कर दिया उन्होंने एक क्षण में, 4 मिनट में। तथोत्थाय हनुमान मुद्गरेण समंततां निष्पेश क्षणा देव मशकाने वे यूथपहां। अध्याय को पूरा करना है। अपने 10,00,000 किंकरों का मरण सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया। उसने वहां 5 बड़े सेनापतियों को भेजा। निहतान किंकरान त्रुत्वा रावण क्रोध मूर्छिता पंच सेनापतिम तत्र प्रेषया मास दुर्मदान। हनुमान जी ने अपने लोह स्तंभ से तुरंत ही उन सबको मार डाला, 5 सेनापतियों को भी मार डाला। तब उसने अधिक क्रोधित होकर 7 मंत्री पुत्रों को भेजा। हनुमान अपितान सर्वान लोम स्तंभे न चाहनन तथा क्रोधो मंत्री सुतान प्रेषयामास सप्तसहा। उनको बहुत बढ़िया चीज मिल गई, हाथ में मारने की बहुत बढ़िया चीज मिल गई उनको। बहुत बड़ा लोहे का स्तंभ था, वो उनके हाथ में आ गया। और अपने पूर्व स्थान में ही बैठकर अन्य राक्षसों का इंतजार करने लगे। और अभी आए कोई, हनुमान जी देख रहे हैं। तब अति बलवान राजकुमार अक्ष आया, अक्ष कुमार आया। पूर्व स्थान उपाश्रित्य प्रतीक्षण राक्षसान स्थितः ततो जगामे बलवान कुमारो अक्षा प्रतापवान। उसे देखकर हनुमान जी अपना मुद्गर लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से उसके मस्तक पर मुद्गर का प्रहार किया और अक्ष को मारकर उसकी सेना का भी नामो निशान मिटा दिया। पूरी सेना चिन्ह भी नहीं रहा, सेना का कोई चिन्ह भी नहीं रहा। तमुत्पात हनुमान दृष्टवा का शेष मुद्गर गगनात्वरितो मूर्धनि मुद्गरेण दथाटयन हत्वा तमक्षम ने शेषम बलम सर्वम चकार सह। राजकुमार अक्ष के वध का वृत्तांत पाकर रावण अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्रजीत से बोला, बेटा जहां मेरे पुत्र को मारने वाला मेरा शत्रु है, मैं वहां जाता हूं, उसे मार कर या बांध कर तेरे पास लाता हूं। तदा श्रुत्वा कुमारस्य वधम राक्षस पुंगवः क्रोधेन महताविष्ट इन्द्रजीतारम अब्रवीत पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रः रिपुः हत्वा तमथवा बद्ध्वा आनयिष्यामि तेन्दिकम्। इंद्रजीत ने पिता से कहा, हे पिता शोक न कीजिए, मेरे रहते हुए आप ऐसे वचन क्यों बोलते हैं। इंद्रजीत पितरम प्राह तेजसोकम महामते मैं स्थित किमर्थम तुम भास से दुखितम बचा। मैं उस वानर को शीघ्र ही ब्रह्म पास में बांध कर लिए आता हूँ। ऐसा कहकर वो महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ हनुमान के पास पहुँचा। तब हनुमान जी भयंकर सिंहनाद सुन हाथ में स्तंभ लिए गरुड़ के समान आकाश में उड़ गए। उन्हें आकाश में उड़ते देख इंद्रजीत ने 8 बाणों से उनके सिर को बीधा, फिर 6 बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को और 1 से उनकी पूंछ को बीधा और घोर सिंहनाद करने लगा। तब महाबलवान हनुमान जी ने अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में उसके सारथी को मार डाला और घोड़ों सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया। तब मेघनाथ ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही हनुमान जी को ब्रह्म पास से बांध लिया। उन्हें राक्षसराज रावण के पास ले आया। बध्वाने क्षेत्र तम तात वानरम ब्रह्म पास तहा रथमारोह है राक्षस बहुभिर्वृतः जगाम वायुपुत्र से समीपम वीर विक्रम तथोति गर्जित श्रुवा स्तंभम उद्यम्य वीरवान उत्पादन भोदेशम गरुत्मान व मारुति तथो भ्रमंतम नमसी हनुमंतम शिली मुखे विध्वात शिरोभागम युभिश्चाष्ट भी पुनः हृदय पाद युगलम संभिरे के निवालधिम भेदयत्वा ततो घोरम सिंहनादम अथाकरोत् ततोति हर्षा हनुमान स्तंभम उद्यम्य वीर्यवान जघाम सारथिम सास्वम रथम चा चूर्ण यक्षणात् ततोन्यम रथमादाय मेघनादो महाबलः शीघ्रम ब्रह्मास्त्रमादाय बद्ध्वा वानर पुंगवम निनाय विकटम राज्ञो रावणस्य महाबलः। लेकिन हनुमान जी वास्तव में बंधे नहीं थे, उन्हें पहले से ही वरदान था कि किसी भी देवता का अस्त्र उनके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन हनुमान जी ने बहाना किया, क्योंकि रावण से मिलना चाहते थे इसलिए बंधने का बहाना किया। जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्त एक क्षण में ही अज्ञान के बंधन को काट कर उनके परम पद को तत्काल प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय में धारण करने से हनुमान जी सदा ही समस्त बंधनों से छूटे हुए हैं। उनका ब्रह्म पास अथवा किसी बंधन से क्या हो सकता है।
यस्य नाम सततम जपन्तिये ज्ञान कर्म कृत बंधनम क्षणात् सदैव परिमुच्य तत्पदम यान्ति कोटि रवि भासुरम शिवम तस्यैव रामस्य पदम भुजम सदा हृत्पद्म मध्ये सुनिधाय मारुतिः सदैव निर्मुक्त समस्त बंधना किम तस्य पार्श्वे रितस्य बंधने। तो यहाँ पर कथा को विश्राम दे रहे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब ब्रह्म अस्त्र से हनुमान जी को बांधा गया तो ये इंद्र जी समझ रहा था कि मैंने बांध लिया। हनुमान जी जानते हैं कि वो नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन उन्होंने बंधने का बहाना किया है। तो वो सोच रहा है कि हनुमान जी बंध गए। लेकिन जो राक्षस थे, दूसरे राक्षस, वो बड़े प्रसन्न होकर के बलकल की रस्सियों से बांधने लगे। अब इंद्र जी बहुत डर गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का एक ये नियम है कि ब्रह्मास्त्र से कोई व्यक्ति बंधा है और उसको किसी दूसरे बंधन से बांधा जाए तो ब्रह्मास्त्र फिर नहीं बांधेगा, तो ब्रह्मास्त्र का बंधन खुल जाएगा। तो इससे अब इंद्रजीत को भय हो गया कि अभी बलकल की रस्सियों से बांधने से, इस बानर की तो इतनी शक्ति है, क्या होगा बलकल की रस्सियों से बांधने से है? लेकिन हनुमान जी दिखा रहे हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है, अब वो बंधे पड़े हैं। हनुमान जी दिखा रहे हैं, इंद्रजीत भी समझ गया कि मेरा ब्रह्मास्त्र इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, हैं? लेकिन वो सोच रहा है कि इसको पता नहीं है तो अच्छा है कि ये अपनों को बंधा हुआ समझ रहा है। तो हनुमान जी को सब कुछ पता है और वो दिखा रहे हैं कि वो बंध गए हैं, अब वो नहीं छूट सकते हैं। हनुमान जी को पता है और इंद्रजीत को पता है कि हनुमान जी बंधे नहीं हैं। हनुमान जी को शायद पता नहीं है इसलिए वो बंधे पड़े हैं, इसलिए वो कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। फिर हनुमान जी की जो है योजना यही है कि रावण के साथ आमने सामने कुछ बात कर लें और उसका क्या विचार है, उसने क्यों किया, क्या किया और आगे क्या करना चाहता है, पूरी बात जो है श्री राम को दें। तो ये जो है दूत का ये कार्य होता है। बहुत बुद्धिमान, कोई बहुत बुद्धिमान हो तो वो इतना काम करता है, उन्हें तो ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता तो कहता है जितना कहा उतना ही करना और उससे ज़्यादा नहीं करना। जो बहुत बुद्धिमान होता है तो जितना कहा उससे ज़्यादा भी कर सकता है, है ना? तो वो जानता है अपने स्वामी का हित और अहित क्या है, शत्रु का कैसे अहित किया जाए और अपने स्वामी का कैसे हित किया जाए। तो एक घटना मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद अगर समय होगा तो कुछ प्रश्न उत्तर हो सकता है। ये घटना बहुत ही आश्चर्य की है। वैसे जितनी भी लीलाएं हो रही हैं हमारे साथ में वो एक से एक बढ़ करके आश्चर्य की लीलाएं हैं। तो इसमें श्री राम की एक अद्भुत लीला हुई है, तो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये पुस्तक के रूप में भी आने वाली है, श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। असित गोविंद प्रभु जो हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने मुझे हैदराबाद में आमंत्रित किया था। ये घटना दिनांक 19 अप्रैल 2014 की है। ये बात कई दिनों पूर्व ही निश्चित हो चुकी थी कि आज के दिवस पर मैं प्रातःकाल की उड़ान के द्वारा दिल्ली से हैदराबाद शहर में आऊँगा और शहर के किसी पूर्व निश्चित स्थान में प्रवचन देकर सायंकाल की उड़ान के द्वारा हैदराबाद से दिल्ली वापस चला जाऊँगा। मेरा ये नियम है कि यदि मैं दिल्ली से बाहर किसी भी स्थान में जाता हूँ तो मैं उसी दिन दिल्ली में वापस आ जाता हूँ, ताकि दिल्ली के अंतर्गत ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में प्रातः 4:30 पर जो मंगल आरती का कार्यक्रम होता है उसमें उपस्थित हो सकूँ। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि मंगल आरती कार्यक्रम में प्रातः 4:30 से प्रातः 4:55 तक जो 25 मिनट की आरती होती है, उतने समय तक मैं राम दरबार के सामने ही खड़ा होता हूँ। इस प्रकार मुझे श्रीमती सीता देवी और श्री राम इन दोनों की सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है। अब जिस दिन मेरी हैदराबाद के शहर में यात्रा निश्चित हुई थी वो दिन 19 अप्रैल का था, परंतु इस दिन के 11 दिन पहले अर्थात 8 अप्रैल को रामनवमी का उत्सव था। ऐसी स्थिति में श्री रामनवमी के भी लगभग 20 दिन पहले किसी विद्यालय के अधिकारी ने पूरे शहर में कुछ ऐसे बोर्ड लगवाए जिनके द्वारा पूरे शहर को आगामी रामनवमी के उत्सव की भी सूचना मिल सके और साथ साथ उस विद्यालय का भी विज्ञापन हो सके। अब 8 अप्रैल को रामनवमी के उत्सव होने के बाद भी पूरे शहर में वे बोर्ड लगे रहे क्योंकि उनमें विद्यालय का भी विज्ञापन था। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मैं जिस 19 अप्रैल की दिनांक पर हैदराबाद आया था उस दिनांक से लगभग एक महीने पहले से
ही पूरे शहर में वे बोर्ड लगे हुए थे। ये श्री कृष्ण के द्वारा बनाया हुआ घटना योग था कि उनमें से एक बोर्ड उस मंदिर के द्वार पर भी लगा हुआ था जिस मंदिर में मेरा कार्यक्रम निश्चित हुआ था। जिस समय असित गोविंद प्रभु ने मंदिर के द्वार पर लगे हुए बोर्ड को ध्यान से देखा तो उन्हें हर्ष के कारण अत्यंत रोमांच हुआ। उस बोर्ड में श्री सीता जी का श्री राम के गले में वरमाला पहनाते हुए अत्यंत सुंदर चित्र के नीचे जो श्लोक लिखा हुआ था उस श्लोक में मेरे नाम का शब्द जितामित्र भी था। वो श्लोक इस प्रकार था, जानकी वल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनहा विश्वामित्र प्रियोदानदहा शत्रुजित शत्रुतापनहा। इस श्लोक में श्री राम के कुल मिलाकर 8 नाम है जिनमें से एक नाम जितामित्र भी है। यद्यपि यहाँ पर जो जितामित्र शब्द आया है वो श्री राम का एक नाम है, परंतु फिर भी श्रीमती सीता देवी और श्री राम ने ऐसी लीला की कि शहर भर में लगे हुए जितने बोर्ड थे उन सभी में एक ऐसा श्लोक लिखा गया था जिसमें श्री राम का जितामित्र नाम भी आया है। क्योंकि श्री राम का ये नाम मुझे भी प्राप्त हुआ है। श्री सीता राम की मेरे ऊपर ऐसी अद्भुत कृपा देखकर असित गोविंद प्रभु और उनके साथी संतोष को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि श्री राम ने अपने नाम के बहाने संपूर्ण शहर में मेरा नाम लिखवा दिया था कि इस हैदराबाद के शहर में मेरा आगमन हो रहा है। साधारणतः जब किसी व्यक्ति का कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के स्थान के मुख्य द्वार पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। अतः श्री राम ने ऐसी लीला की कि जिस मंदिर में मेरा कार्यक्रम होना निश्चित हुआ था उस मंदिर के मुख्य द्वार पर और संपूर्ण शहर में उन्होंने अपने चित्र के नीचे अपने नाम के बहाने मेरा नाम लिखवाया। अथवा ऐसा भी कहा जा सकता है कि श्री राम ने कुछ ऐसे कारण बनाए कि असित गोविंद प्रभु को उसी मंदिर में प्रभु मेरा कार्यक्रम निश्चित करने के लिए विवश होना पड़ा जिस मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री राम का एक ऐसा नाम लिखा हुआ था जो मुझे प्राप्त हुआ था। जिस समय 19 अप्रैल 2014 की दिनांक पर मैं उड़ान के द्वारा हैदराबाद के एयरपोर्ट में उतरकर असित गोविंद प्रभु के साथ गाड़ी में बैठकर मैं उनके घर में आया और फिर उनके घर से उस मंदिर में आया जहाँ पर मेरा कार्यक्रम होने वाला था। उस समय पूरे रास्ते में और उक्त मंदिर के द्वार पर श्री सीताराम के चित्र के नीचे अपना नाम देखकर और श्रीमती सीता देवी और श्री राम के अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर मैं अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुआ। हरि बोल। मेरी हैदराबाद की सबसे पहली यात्रा थी। असित गोविंद प्रभु ने कुछ दिन पहले से मेरे कार्यक्रम और आगमन से संबंधित बैनर शहर के अनेक स्थानों में लगाए थे और निमंत्रण पत्र भी छपवाए और बंटवाए थे। तो वे लोग मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे और मेरे आगमन के विषय में यथाशक्ति प्रचार कर रहे थे, परंतु भगवान श्री राम मेरे आगमन के विषय में कितने स्नेहिल थे इस बात का पता तो तब चला जब उन लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने नाम के बहाने उक्त मंदिर के द्वार पर और शहर के अनेक स्थानों में मेरा नाम लिखवा दिया था। पिछले दिवस अर्थात दिनांक 18 अप्रैल 2014 को संतोष, जो असित गोविंद प्रभु के मित्र हैं और मुझसे प्रभावित हैं, ने दोपहर के लगभग 1 बजे फोन किया और उन्होंने कहा कि वे उस स्थान को देखना चाहते हैं जहां पर मेरा कार्यक्रम होना है। उनके द्वारा उस स्थान का पता चलने पर वे उस मंदिर में गए जहाँ श्री राम दरबार और हनुमान जी की अलग अलग वेदियाँ थीं। अब जिस समय वे अपनी मोटरसाइकिल के द्वारा अपने घर की ओर वापस जा रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक बड़ा चित्र लगा हुआ था जिसमें भगवान रामचंद्र का सीता महारानी के साथ विवाह का सुंदर चित्र था। अब चित्र को देखते हुए उनकी नज़र उस चित्र में लिखे हुए श्लोक पर पड़ी। उस श्लोक की प्रथम पंक्ति इस प्रकार थी, जानकी वल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनहा। ये शब्द पढ़कर वे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि श्री राम का ये नाम जितामित्र जो मुझे भी मिला हुआ है साधारणतया शास्त्रों में कम मिलता है। राम के कई नाम मिलते हैं लेकिन ये नाम बहुत कम मिलता है, परंतु श्री राम ने स्वयं मेरे इस नाम को अपने नाम के बहाने अपने चित्र के साथ लिखवाया था। इस घटना को असित गोविंद प्रभु ने तुरंत प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को फोन के द्वारा बतलाया, एक दिन पहले ही बताया। अब अगले दिन मैं जिस समय इस मंदिर में आया उस समय मैं स्वयं इस आश्चर्य को देखने लगा। कुछ दिनों पश्चात उन लोगों ने पता लगाया कि किसने ऐसे बोर्ड स्थान स्थान पर लगाए थे, तो उन्हें पता चला कि लगभग 1 महीने पहले श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में किसी विद्यालय के अधिकारी ने इंटरनेट के द्वारा ये चित्र प्राप्त किया था और उसने इसके बोर्ड बनाकर उक्त मंदिर के द्वार पर और अन्य स्थानों में अपने विद्यालय के विज्ञापन हेतु लगवा दिए थे। परंतु ये तो श्री राम की दिव्य योजना थी कि उन्होंने अपने चित्र के साथ मेरे नाम को लगभग एक महीने पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर लगवाया। इस बात को अत्यंत आसानी के साथ कोई व्यक्ति समझ सकता है कि श्री राम मेरे ऊपर कितने दयालु हैं। हरिओम। प्रिया प्रभु कुछ और बातें बताना चाहते हैं, उसके आगे और भी कई घटनाएं हुई हैं, कुछ बता